नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवत स्कंध 3 अध्याय 32 श्लोक क्रमांक 23 वासुदेवे भगवते भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम् ज्ञानम् यद् ब्रह्मदर्शनम्। कृष्ण चेतना में लगने और भक्ति को कृष्ण में लगाने से ज्ञान विरक्ति तथा आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना संभव है। मेरे साथ कृपया दोहराइए, कृष्ण चेतना में लगने और भक्ति को कृष्ण में लगाने से ज्ञान विरक्ति तथा आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना संभव है। तात्पर्य, अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि भक्ति योग उन लोगों के लिए है जो दिव्य ज्ञान तथा वैराग्य में अग्रसर नहीं हो पाए हैं। ये अल्पज्ञ लोग अर्थात जिनकी बुद्धि समुचित रूप से काम नहीं करती, ये उनकी सोच है कि जो लोग ज्ञान में और वैराग्य में आगे नहीं बढ़ पाते, ये भावनात्मक मार्ग को ग्रहण करते हैं और भक्ति योग भावनात्मक मार्ग है। परंतु वास्तविकता तो यही है कि जो समग्र कृष्ण चेतना में भक्ति में लगा रहता है, उसे न तो वैराग्य के लिए अलग से प्रयत्न करना पड़ता है, न ज्ञान के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। सत्य यही है, अलग ज्ञान के लिए अथवा वैराग्य के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति से ही दिव्य ज्ञान की उत्पत्ति होती है और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अविचल भाव से भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उसमें स्वतः देवताओं के गुण आ जाते हैं। श्लोक है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचनः सर्वैः गुणैः स्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणः मनोरथेन असति धावतु बही। निष्किंचन भाव से जो भक्ति में लग जाता है, उनमें सारे दैवी गुण आ जाते हैं। किंतु होता यही है, ऐसा एक उदाहरण है। प्रमाण क्या है? बोले, एक शिकारी को पशुओं को मारने में बड़ा मजा आता था, किंतु भक्त हो जाने पर वह एक चींटी भी मारने को तैयार नहीं था। ऐसा होता है भक्त का गुण, मारता था तड़पा तड़पा कर, जब भक्त हो गया कि चींटी को भी नहीं मारता था। जो लोग दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें चाहिए कि समय खोए बिना विशुद्ध भक्ति में लग जाए। जिनको ज्ञान चाहिए, वो प्रतीक्षा ना करे कि बस मैं कल ही करूंगा, आज तो परिवार थोड़ा समेट लेता हूं, काम जो दायित्व है उसको संपन्न करके फिर मैं भक्ति में लग जाता हूं। नहीं, उनको समय खोए बिना विशुद्ध भक्ति में लग जाना चाहिए। परम सत्य विषय के ज्ञान के बारे में किसी निश्चित मत तक पहुंचने में इसी श्लोक में आया हुआ ब्रह्म दर्शनम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी शब्द का अर्थ है अध्यात्म का अनुभव या ज्ञान। वासुदेव की सेवा करने वाला ही ब्रह्म को समझ सकता है। यदि ब्रह्म निराकार हो तो दर्शन अर्थात प्रत्यक्ष दर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। एक तर्क दिया गया, एक लॉजिक है प्रभुपाद जी देते हैं। बोले, दर्शन एक क्रिया है कि नहीं? दर्शन, खाना पीना, सोना, चलना, बोलना, एक एक क्रिया है। यदि ब्रह्म दर्शन शब्द यहां आया है, यदि हम ईश्वर को निराकार मानते हैं, तो दर्शन शब्द का कोई अर्थ ही नहीं बनता। यदि व्यक्ति अपने आप को अनंत मान ले, मान लीजिए हमारी पृथ्वी या बस यहीं से उस दीवार तक है 25 मीटर की लंबी, मान लीजिए इतना ही है, अथवा कोई मकान मान लीजिए इतना ही लंबा है, तो उसके अंदर जो आदमी है उतना लंबा चौड़ा है, ठीक है, तो वो चल सकता है? चल पाएगा? क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि घर की लंबाई चौड़ाई जितनी है उस व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई उतनी है, और वो प्रवेश करेगा उस घर में, समा जाएगा, तो चलेगा कहां? चलने के लिए रिक्त स्थान चाहिए, खाली जगह चाहिए, खुला स्थान चाहिए, चलेगा कहां? तो जिस प्रकार उस कमरे में, उस प्रकोष्ठ में उस व्यक्ति के लिए चलना क्रिया असंभव है, उसी प्रकार निराकार ब्रह्म के लिए दर्शन शब्द बेकार है। समझ में आ रहा है? क्लियर एकदम? माता, समझ में आ रहा है? यदि ब्रह्म निराकार हो तो दर्शन अर्थात तो प्रत्यक्ष दर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता ये तो अलग बात है, पर दर्शन हो ही नहीं सकता, क्या करेगा? दर्शन तो भगवान वासुदेव के देखने को बताता है, जब तक देखने वाला तथा देखे जाने वाला व्यक्ति ना हो तब तक दर्शन नहीं हो सकता। ये जितनी क्रियाएं हैं उनके लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। क्या है? जैसे मान लीजिए खाना है, तो खाने के लिए तीन वस्तु की आवश्यकता है कि नहीं? खाने वाला, जो 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 खाने की क्रिया, और जो खाए जाने वाला, है कि नहीं? खाद्य, खादक और खाद्यान रूपी क्रिया, ठीक है कि नहीं? जैसे रोटी है, मान लीजिए रोटी खाने योग्य है इसलिए उसको खाद्य कहते हैं, और खाने वाला कोई होना चाहिए, तो दो हो गए कि नहीं, और खाने की क्रिया, ये दो व्यक्ति हो, दो वस्तु हो, तभी ये क्रिया उचित लगती है, अन्यथा इस क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो प्रभुपाद जी यहां तर्क देते हैं, व्यक्ति हो ना हो तब तक दर्शन नहीं हो सकता। ब्रह्म दर्शन का अर्थ है कि जो ही मनुष्य भगवान को देखता है उसे तुरंत निराकार ब्रह्म का अनुभव हो जाता है, ऐसा है। भक्त को ब्रह्म की प्रकृति जानने के लिए अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, इसकी पुष्टि भगवत गीता में कहा गया, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्त तुरंत परम सत्य में स्वरूप सिद्ध हो जाता है, इस प्रकार का ये भक्ति वेदांत तात्पर्य संपन्न होता है इसी श्लोक के लिए। वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनेति आशु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। प्रातःकालीन सत्संग में आप सबका स्वागत है। ठंड तो ज्यादा है नहीं, बस वो जितना अपना प्रकोप डालना था उसने डाल दिया। मकर संक्रांति आने वाली है, ये प्रकृति का नियम है, धीरे धीरे ये परिवर्तन हो जाता है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य आप लोगों ने सुना, इस पर दो तीन बातों पर महत्व दिया गया है, हम क्रम के अनुसार समझाएंगे। आइए श्लोक के शब्दों पर ध्यान देते हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम यद ब्रह्म दर्शनम। ये श्लोक भागवत में तीन बार आए हैं, थोड़े थोड़े परिवर्तन मात्र हैं। ये श्लोक तो इस जगह में आप लोग देख ही रहे हो, तीसरे स्कंध के 32वें अध्याय का यह 23वां श्लोक है। एक श्लोक तो ये रहा, और जिस प्रमुख श्लोक का गायन किया जाता है भागवत के, वो प्रथम स्कंध के दूसरे अध्याय वाला श्लोक है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। ये दूसरे अध्याय का है, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का यह श्लोक है। थोड़ा सा परिवर्तन, वहां पर अहेतुकम और यहां पर यद ब्रह्म दर्शनम, बाकी श्लोक का ज्यों का त्यों वहां पर यहां है। और ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद जी जब अपने प्रिय भक्त पुरंजन को उपदेश, प्राचीन बरही को उपदेश करते हैं, उस प्रसंग में भी इस श्लोक की आवृत्ति की गई है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहितः सद्रीचनेन ज्ञानम च वैराग्यम जनयिष्यति। तीनों श्लोक एक ही है। संस्कृत वांग्मय में श्लोकों में अर्थ तो एक ही है, पर थोड़े थोड़े शब्दों में हेर फेर है, अंतर मात्र है, पर तीनों श्लोकों का भाव यही है। इसी श्लोक में भगवान श्री कपिल देव अपनी मां देवहूति से कहते हैं, हे मां, वासुदेव भगवान वासुदेव में की गई भक्ति साधक में ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न करा देती है। यह स्पष्ट अनुवाद यही है। ये जो अनुवाद हमारा दिया गया ये भारी क्लिष्ट है, ये वास्तव में शुद्ध हिंदी का अनुवाद है नहीं। देखिएगा, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित, हे मां, भगवान वासुदेव में की गई शुद्ध भक्ति साधक में ज्ञान एवं वैराग्य को उत्पन्न करा देती है। सीधा है। तो तीन बार भागवत में जिस श्लोक का अवतरण किया गया है, तो समझ लेना चाहिए कि यह श्लोक का भाव हम सब साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के किसी श्लोक में प्रभुपाद जी ने पुनरावृत्ति पर टीका करी है। उन्होंने कहा, पुनरावृत्ति उसी स्थान पर की जाती है जिसकी बहुत आवश्यकता होती है। बार बार कहने का अर्थ यही है, साधक की दृष्टि उस स्थान पर जाएं, वो देखें, अन्यथा पुनरावृत्ति को दोष माना गया है। साहित्य में, संस्कृत में पुनरावृत्ति के दोष है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस केशव काश्मीर ने जो आवृत्ति किया था उसमें दोष निकाला था, एक दोष का नाम था पुनरावृत्ति। एक ही बात को बार बार कहना यह अच्छा नहीं लगता, पर एक ही ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, उसमें ऐसा तो नहीं कि व्यास देव के शब्द को उसमें कहीं ऐसे ही सूखा पड़ गया अथवा उनको शब्द नहीं मिले और एक ही श्लोकों को बार बार कहने लगे। नहीं, हमारे भक्तों की दृष्टि को आकर्षित करने के लिए यह कितनी महत्वपूर्ण संदेश, कितना महत्वपूर्ण संदेश है, इसलिए बार बार श्लोक में कहा गया आद्य मध्य च अंते। और ये तो आद्य आद्य ही प्रसंग है, भागवत के प्रथम स्कंद में है, भागवत के चतुर्थ स्कंद में है, भागवत के तृतीय स्कंद में है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनेति आशु वैराग्यम ज्ञानम च जदहेतुकम। आइए विचार करते हैं वासुदेव शब्द पर। आप लोग सभी जानते हो हमारी संस्था है कृष्ण भावनामृत संघ, इसमें वासुदेव शब्द को सब जानते हैं, पर इसमें एक महान रहस्य छिपा हुआ है। क्या रहस्य है? वासुदेव शब्द को यदि हम व्याकरण के अनुसार देखते हैं, इसका अर्थ बनता है वसुदेवे भवतीति वासुदेवः। क्या? वसुदेवे भवति इति वासुदेव, यानी वसुदेव रूपी खेत में जो उत्पन्न होता है उसी का नाम है वासुदेव। स्पष्ट है, वसुदेवे भवतीति वासुदेवः। तो वसुदेव, वसुदेव कौन है? वसुदेव हैं वृष्णिवंशी राजा, सूरसेन के वंश में उत्पन्न हुए थे राजा वसुदेव। उनकी प्राय 13 से अधिक पत्नियां थी और 100 से ऊपर ज्यादा पुत्र थे, कहीं एक से एक एक कन्या भी हुई थी पर 100 से अधिक पुत्र थे। तो वसुदेव में जितने पुत्र उत्पन्न हुए वसुदेव से, तो उन सबको क्या कहेंगे? हाँ जी, वासुदेवी तो कहेंगे, गद सारण कीर्तिमंतम, कीर्तिमंतम प्रथमजम। देवकी का जो प्रथम पुत्र हुआ था उनका नाम था कीर्तिमंतम, मारा गया था कंस के द्वारा, उनको भी वासुदेव कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये सब वासुदेव हैं, देवकी के जितने, केवल देवकी के नहीं, देवकी, श्रीदेवा, श्रुतदेवा, ये सब कई स्त्रियां थी, रोचना, ईला, भद्रा, रोहिणी, पौरवी, 13 से अधिक पत्नियां थी, और 100 से जितने भी संतान उत्पन्न हुई सबका नाम रहेगा वासुदेव। ये तो असली वासुदेव है। और ऐसा नहीं हमारे भारत में नकली वासुदेव भी आए, पौंड्रक वासुदेव जो लकड़ी वाला गरुड़ बना करके उस पर चढ़ के आया था लड़ाई करने के लिए, वो भी कहलाता था मैं भी वासुदेव हूं। तो क्या इन सबकी भक्ति की जाए? वासुदेव शब्द से तो सभी वासुदेव है, देवकी के जितने पुत्र हैं और वसुदेव के जितने पुत्र हैं, सब वासुदेव है कि नहीं है? सब वासुदेव है, परंतु नहीं, इन सबकी भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो उनसे अलग करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वासुदेवे भगवती, वासुदेवे भगवती। बोले उनमें से, वसुदेव के पुत्रों में से जो भगवान है उनकी भक्ति करनी है। वासुदेवे भगवती, ये जितने वासुदेव सब सब मारे गए, कोई कोई कैसे मर गया, कोई कैसे मर गया, पर श्री कृष्ण अजोपी सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपी सन, ये वासुदेव है। ये जो वासुदेव है ये भगवान है, इनमें भग है, इनमें अप्राकृत ऐश्वर्य अनंत मात्रा में है। प्राकृत ऐश्वर्य की तो कोई गिनती ही नहीं है, ये सागर, ये रत्नाकर, ये जो देख रहे हैं इसकी कोई गिनती नहीं है। जिस सागर में खीर दूध की तरंगे हिलोरे उठती है, उसके सामने ये नमक का सागर क्या है? ये सब प्राकृत है। ये नमक के सागर में मुक्ता मिलता है तो दूध सागर में क्या नहीं मिलता होगा? अप्राकृत सागर है, अप्राकृत ऐश्वर्य अनंत मात्रा में है, इसीलिए उस अप्राकृत ऐश्वर्य का नाम भग है मेरे प्रभु। ये प्राकृत ऐश्वर्य का नाम भग नहीं है, इससे क्या मतलब? और श्री कृष्ण के पास, श्री कृष्ण के पास वो सारी सामर्थ्य, सारी भगवत्ताएं थी, इसीलिए कहा गया वासुदेवे भगवती, ये भगवान है। और केवल यहां नहीं कहा गया, शंकराचार्य ने भी कहा, आदि शंकराचार्य उन्होंने कहा, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणुरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद गुरु। वासुदेवों से कैसे अलग थलग किया जाता है? बोले सब वासुदेव नहीं है, ये वसुदेव सुतम, ये वसुदेव के सुत तो है ही है, परंतु ये कौन है, किनकी भक्ति करनी चाहिए, कौन जगत गुरु है? कंस चाणुरमर्दनम, जिन्होंने कंस को मारा था। वसुदेव के सारे पुत्रों ने कंस को थोड़ी मारा था, कंस को क्या मारेंगे, कंस के भय से कहीं इधर उधर भागते थे। लिखा हुआ है भागवत में, विवेशु, वो किसी किसी गुफा में घुस गए, कहीं कुछ रह गए, अक्रूर जैसे एक आधे लोग वहां रहने लगे, क्योंकि आगे चल के कृष्ण सेवा का अवसर मिलेगा, इसलिए अक्रूर जी आदि रह गए, उद्धव जी आदि भी रहे, पर ये जो है बाकी लोग ऐसे तो नहीं है। पर कंस को किसने मारा? जिसने मारा वही भगवान है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणुर मर्दनम, कंस को मर्दित किया था। प्रगृह केशेषु चलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचात
तस्यो परिष्टात स्वयं अब्जुनाभ पपात विश्वासरे आत्मतंत्र। तुंग मंचा पर कंस बैठा था, बड़ा सिंहासन था, बहुत सुंदर सा था, मल्ल युद्ध देखने के लिए उस रंगमंच की भव्य व्यवस्था कराई गई थी। पर कृष्ण ने क्या किया, निपात्य प्रगृह केशेषु, उनके केस पकड़ा, चलत किरीटम, उनके जो मुकुट जो सम्मान को बढ़ाता था उस मुकुट को ऐसे फेंका, चलत किरीटम, फेंक दिया उस कंस के उस मुकुट को। उस मुकुट को लेकर के कंस बड़ा अभिमानी हो गया था, उग्रसेन से उस मुकुट को उसने जबरदस्त अपने माथे पर रखा था। कृष्ण ने फेंक दिया उसको, चलत किरीटम, क्या किया, निपात्य, उसको फेंका, कहां फेंक दिया, रंगो परी, जो रंग छत्र रंग भूमि थी उस पर कहां से गिरा, तुंग मंचात, अति ऊपर से बंधा हुआ उस मंच उससे गिराया। गिरा करके क्या किया, प्रभु का क्रोध शांत नहीं हुआ, ये क्रोध रस है, यहां ये एक रस है। तस्यो परिष्टात स्वयं अब्जनाभ, और उसके ऊपर अब्जनाभ श्री कृष्ण बैठे, अब्जनाभ माने जिनके नाभि से अब्ज निकलता है, अर्थात 14 भुवन जिनके नाभि में समाया हुआ है, ऐसे भार को लेकर के श्री कृष्ण उस कंस पर बैठे। तस्यो परिष्टात स्वयं अब्जनाभ पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र, विश्व के आश्रय आत्मतंत्र भगवान उस पर बैठा। कंस आत्मतंत्र नहीं था, वो तो हुकूमत चलाता था, पर श्री कृष्ण के समीप उसकी एक दाल भी नहीं गली। विश्वाश्रय आत्मतंत्र, आत्मतंत्र है, अपनी इच्छा से है, कंस अपनी इच्छा नहीं चला सकता था। उसको पकड़कर उस पर बैठ गए, वो है कंस चाणूरमर्दनम, और जितने भट्ट थे जितने पहलवान थे ये सब अपने लंगोटी लेकर चले गए, ऐसा लिखा हुआ है। शल तुशल चाणुर मुष्टिक कूट, ये सब उनके उपाध्याय थे, ये पहलवाने उनको सिखाते थे, वो भाग गए उनके नाम सुनकर के। कई लोगों तो वो तो शल तुशल कूट चाणुर मुष्टिक तो मारे गए, बाकी लोग सब भाग गए। इसलिए आदि शंकराचार्य ने कहा, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणुर मर्दनम देव के परमानंदम कृष्णम बंदे जगत गुरु। वो वासुदेव है, ऐसे वासुदेव, वासुदेव भगवती, ये उनकी भगवत्ता है। भक्ति योग प्रयोजिता वासुदेव, ये वासुदेव के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है, इसीलिए वासुदेव है। जिन्होंने कंस को मारा था, चाणूर को मारा था, सल को मारा था, तोसल को मारा था, कूट को मारा था, जिनमें समग्र ऐश्वर्य है, भगवत्ता है। विभूति योग में भी श्री कृष्ण ने कहा है, वृष्णिनाम वासुदेवोऽस्मि पांडवानाम धनंजय कविनाम अपि अहम व्यास मुनिनाम अपि अहम व्यास कविनाम मूषना कवि। बोले वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूं, ये विभूति जो मैं वर्णन कर रहा हूं ये मेरी विभूतियां हैं, इसलिए वो भगवान है, सर्वेश्वरी है, भगवत्ता उनमें है। एक तो ये अर्थ रहा, ये स्पष्ट अर्थ है श्री कृष्ण का। और वासुदेव का गहरा अर्थ क्या है, विशुद्ध सत्वम, ये विशुद्ध सत्व को कहते हैं वासुदेव। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम सत्वी च तस्मिन् भगवान वासुदेव। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यदीयते तत्र पुमान अपाव्रताः। विशुद्ध सत्वम, सत्वम विशुद्ध सत्वम, वो विशुद्ध सत्व को वसुदेव कहते हैं। ये उद्गार, ये वाणी भगवान शंकर की है, अपनी देवी, अपनी अर्धांगिनी सती से भगवान शंकर कहते हैं विशुद्ध सत्वम। ये विशुद्ध सत्व को वसुदेव कहते हैं। और उस विशुद्ध सत्व में जो जो विशुद्ध सत्व माने अंतःकरण और विशुद्ध माने अप्राकृत, तीनों गुणों से परे हैं। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, तो विशुद्ध सत्व को ही वसुदेव कहा जाता है। हम भक्तों को इन सब बातों को बड़े स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए, इसी से मन में सैद्धांतिक भाव बढ़ जाता है, अच्छा रहता है, भजन करने में आसान रहता है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यदि अते तत्र पुमान अपाव्रता। पुमान माने ईश्वर श्रीहरि, अपाव्रत माने अपगत आवृतम यस्मात, जिनसे आवरण जा चुका है उनको अपावृत कहते हैं, अर्थात उस विशुद्ध अंतःकरण में निरावरण परमात्मा का प्राकट्य होता है। स्पष्ट अर्थ यही है, सत्वम विशुद्धम, विशुद्ध सत्व माने विशुद्ध अंतःकरण, उस विशुद्ध अंतःकरण में बिल्कुल साफ साफ ईश्वर का श्री कृष्ण का दर्शन होता है। इसीलिए श्री शंकर कहते हैं सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, ये वसुदेव के नाम से वो अंतःकरण जाना जाता है। और यदि यते तत्र पुमान अपावृत, तत्र माने कुत्र, कहां पे, उस विशुद्ध अंतःकरण में पुमान अपावृत, एकदम निरावरण प्रभु का दर्शन होता है, निरावरण प्रभु का दर्शन होता है। गीता में कहा कि हमारा दर्शन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, योग माया समाप्त। और विशुद्ध अंतकरण हो जाए तो उसका दर्शन भी हो जाए। पुमान अपाव्रत सत्वे से तस्मिन भगवान वासुदेव, उस विशुद्ध अंतकरण में जो प्रभु प्रकट होते हैं उन्हीं का नाम है वासुदेव। सत्वे च तस्मिन भगवान वासुदेव, उस विशुद्ध अंतकरण में जो पुरुष का उदय हुआ है उन्हीं का नाम है वासुदेव। कितनी बढ़िया बात है, भागवत के श्लोक कितना मार्मिक है। सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेव यदु ख्यजु मे नमसा विधीयत। अरे सती, उस अधोक्षज भगवान को हम मन से नमन करते हैं, नमसा विधियत, हम तो निरंतर समाधि में उनका प्रणाम करते हैं, उनको सम्मान करते हैं। अधोक्षज विशुद्ध अंतकरण में जिस प्रभु का दर्शन होता है उनको अधोक्षज कहते हैं, इंद्रियों से नहीं। यही शास्त्रों का नियम है, भाव दृष्टि से भावग्राही का दर्शन होता है। हां, भावरूपी चंद्रिका से हृदय भवन में जब भावग्राही का दर्शन होता है भक्त भाव विभोर होता है। ये भागवती भाषा है, भावरूपी चंद्रिका से हृदय भवन में जब भावग्राही का दर्शन भक्त करता है तब प्रेम भाव से वो भाव विभोर होता है। ये भागवत कहती है, तुम भाव योग परिभावित हृत सरोज आस्य सृतक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद जद भावते उरुगाय विभावयंती तत्तद बपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। हे भावग्राही, तुम भाव योग परिभावित हृत सरोज, वो हृत सरोज हृदय कमल में आपका प्राकट्य होता है। आसे माने आप वहां पे हैं, इसलिए भावचंद्रिका चाहिए। ये भावचंद्रिका के बिना भावग्राही का दर्शन नहीं होता है। ब्रज लोकेर कोनो भाव लैया जे भजे, भाव योग्य देह पाया कृष्ण पाए ब्रजे। बोले ब्रज लोक के भाव को आश्रय करके यदि कोई भक्त ब्रज में भजन करता है उनको भावग्राही का दर्शन होता है। तो सत्वे च तस्मिन भगवान वासुदेव यदोक्षजो में नमसा विधियत। हम मन से, हम समाधि ज्ञान से, हम समाधि में उनका दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, बाह्य आडंबर करने की क्या आवश्यकता है। हे देवी, आप जो कहती हो अथवा जो दुनिया कहती है मैंने दक्ष को नमस्कार नहीं किया, ये उचित नहीं है। नमसा विधियते, हम तो नमन करते हैं, मन से करते हैं, समाधि से करते हैं, हमारे चित्त आकाश में, हमारा भावाकाश में, हमारे मन में सदैव वासुदेव की स्थिति है। ये भाव है वासुदेव का। चैतन्य चरितमृत भी वही कहते हैं, संधि नीर सार तत्व, हाँ, शुद्ध सत्व का है। जो संधिनी, संधिनी शक्ति का जो सार है, हाँ, उसी को ही शुद्ध सत्व कहते हैं। और वासुदेव कृष्ण सत्ता तहारा आश्रय, वासुदेव श्री कृष्ण की सत्ता का वो आश्रय है। और उनके पिता माता गृह परिजन स्थान ये सब उस विशुद्ध सत्व का ही तो विकार है। कितना लंबा रास्ता है, लंबा रास्ता है कि नहीं? हां प्रभु, ये राह कितनी लंबी है, कितनी लंबी? हां, दूर, बहुत दूर है, बहुत दूर। इसीलिए तो संत भक्त, उस भक्त मीराबाई ने गाया है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जब भक्त कोई गाता है उसमें अनंत भाव छिपा रहता है। भक्त देखता है तीनों गुणों से इस माया में हम जकड़े हुए हैं, कभी तम, कभी रज, कभी सत्व, इसमें ये जंजीरों से हम बंधे हुए हैं। प्रभु आप रहे तो शुद्ध सत्व में, आपका दर्शन हमारे लिए दुर्लभ है। इसलिए भक्त प्रेम से आकुल होकर, व्याकुल होकर वो गा उठता है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बहुत लंबी राह प्रभु, तुम्हारी राह बहुत लंबी है, कैसे हम उस वासुदेव, उस वसुदेव सत्व तक पहुंच जाए। वासुदेवे भगवती, अब वही भगवान है, हाँ? भक्ति योग प्रयोजिता। और उस कैसे जाओगे ना, भक्ति योग प्रयोजिता, भक्ति योग के माध्यम से हम जाएंगे। जैसा मैंने निवेदन किया, तुम भाव योग परिभावित हृत सरोज, ये भाव योग भक्ति योग एक ही बात है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा तुम भाव योग, ये तुम भाव योग से दर्शन देते हो, और भागवत में कहा गया भक्ति योग। पर मेरे प्रभु, ये भक्ति योग हमारे जैसे करने से उनका दर्शन होना संभव नहीं है, नहीं है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, प्रयोजिता भक्ति योग। भक्ति तो आप सब जानते हो, उसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। भक्ति माने प्रेममयी सेवा, प्रयोजित माने प्रकर्षेण योजिता। जहां कहीं भी भागवत में भक्ति शब्द आया है, तीव्रण आया, तीव्रण भक्ति योगे ना, भक्ति योग प्रयोजिता, प्रकर्षण जोड़ना। इसका क्या अर्थ है, हम भी तो जुड़े हुए हैं पर प्रकर्षण नहीं जुड़े हुए। हमारा मन कहीं, हमारा चित्त कहीं, हम कहां है, बोली एक है, करनी एक है, कथनी एक है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। और आप लोग सभी जानते हो ये महाविज्ञान है, ये परम सत्य है, ये निर्व्यलिक है, इसमें कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई छंद नहीं, कोई चातुर्य नहीं, कोई धोखा नहीं, कुछ भी नहीं है। परम सत्य को उपास्थापन करने वाला यह ग्रंथ है। प्रयोजित माने भक्ति को, हाँ, श्री कृष्ण में संपूर्ण आत्मा को, संपूर्ण मन को, संपूर्ण चेतना को, संपूर्ण इंद्रियों को श्री हरि में समर्पित कर देना, उसी का नाम है प्रयोजित। माने प्रयत्न के साथ उनको जोड़ देना, इसका नाम है प्रयोजित। यज धातु जोड़ने में यज जोड़ने में है, प्रयोग करना है संपूर्ण मन वाणी क्रिया को, कायेन वाचा मनसे इंद्रियरिवा, इसी का नाम है भक्ति योग प्रयोजिता। और इसका दृष्टांत देते हैं प्रभुपाद जी ने, यहां दिया है दृष्टांत कैसे प्रयोग किया गया है, कैसे प्रयोग करना चाहिए वो दृष्टांत देकर कहते हैं। क्या प्रभु व्याध से हम इतने तो हीन नहीं है, है क्या? हाँ, ब्राह्मण परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है, शास्त्र कहता है ब्राह्मणस्य मुखम आसीत, उस विराट पुरुष के मुखारविंद से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ बाहु राजन्य कृतः, राजा भुजाओं से उत्पन्न हुआ है, उरु तद वैश्य, यह जांघों से वैश्य की उत्पत्ति, पदभ्याम शूद्र अजायतः, चरणों से शूद्र। व्याध, व्याध से क्या हम लोग श्रेष्ठ नहीं है? है नहीं है कि नहीं? व्याध से श्रेष्ठत्व तो हमारे में है कि नहीं है? है हम लोगों में, इतना तो आत्मविश्वास करो। मेरे प्रभु भक्ति का विश्वास ही प्राण है, भक्ति का विश्वास ही प्राण है। विश्वास नहीं मतलब भक्ति के प्राण नहीं है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति, फिर वासुदेव, ये वासुदेव हैं। विद्वान व्यक्ति जानता है कि वासुदेव सर्व कारणों के कारण है, और वो लग जाता है वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा, वो महात्मा हो जाता है। क्या सर्व कारण का कारण है? तब तो भक्ति में लग जाता है, तब तो फल देता है। वो जानता है कि सभी कारणों के कारण है, न वही वाचो न श्रोत्राणी न चक्षुंसी न मनसा इति आचक्षते प्राणै वेति इति आचक्षते प्राणै वेति सर्वाणि भूतानि जायन्ते। वेद इसको कहता है, ये तैतरीय उपनिषद का मंत्र है। न वही वाचो, हम जो बोलते हैं ये बोलना प्रभु, ये मानव जीवन ये कितना अमूल्य है हम कह नहीं सकते। बोलने की शक्ति प्रभु ने हमें दी है, सब में दी है कि नहीं? कोई नहीं बोल सकता, बोल सकता कोई? सभी नहीं बोल सकते। और इंसान का सर ऊंचा करके रखा है, कोई पशु ऐसा चलता है, कोई टेढ़ा चलता है, कोई नीचे रेंगता है, पर इंसान सीधा चलता है। मानो श्री कृष्ण ने कहा, मैंने तुमको तुम्हें सर ऊंचा बना के दिया है, तुम हमेशा अपना सर ऊंचा रखो। कैसे ऊंचा रखोगे? भक्ति करने से ही होता है, श्री कृष्ण के प्रति भाव जगाने से होता है। यदि हम उनको जानते हैं सर्व कारणम बहुनाम जन्मनाम अंते नवी वाचो, ये जो वाणी है, ये वाणी की कोई करिश्मा कोई करतूत तो नहीं है, वो निकल नहीं सकती। न श्रोत्राणी, ये कान सुन नहीं सकते, न चक्षुंसी, ये नेत्र देख नहीं सकते। फिर कैसे देखते हो? हाँ, प्राणे व्यतीति आचक्षते, बोले प्राणों से ही ये सब होता है नहीं? प्राण जब कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है, फिर आंखों को दिखते नहीं है, कानों को सुनता नहीं है, वाणी बोलती नहीं है, व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है। बोले प्राणे हेवितानि सर्वाणि भवन्ति, बोले प्राणों से ही होता है। बोले ठीक है, फिर तो प्राण ही भगवान है। बोले नहीं, नहीं हो सकता। बोले उन प्राण में जो प्राण होकर के प्रविष्ट है वो वासुदेव है। यम चेतयते विश्वम, विश्वम न चेतयते यम, यस्मिन जागर यस्मिन सयाने जागृति अस्मिन नायमतम वेद वेदसः। बोले जो सोता हुआ को जगाता है, जिनको विश्व नहीं जानता है, जो विश्व को जानता है वो है वासुदेव। जान लेता है व्यक्ति, जान करके भजन करता है। इसीलिए भक्ति योग प्रयोजिता प्रकर्षण लगा देना चाहिए। उस व्याध ने लगा दिया, प्रमाण दिया गया शास्त्रों में, बिना प्रमाण की एक भी बातें नहीं कही गई है। उस व्याध ने कैसे भजन किया, नारद जी ने देखा। ऐसे कुंभ मेला लगा हुआ होगा, श्री नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए कुंभ मेला में पधारे, सभी संत आए। देखो हमारा भारत कितना गौरवामंडित है, हम लोग कितने कितने महिमामंडित है। भारत भूमि है जहां चरणामृत की धारा प्रवाहित हो रही है, नहीं हो रही है? अरे एक चरणामृत को एक बूंद लेकर के हम माथे पर रखते हैं। भारत वो भूमि है जहां चरणामृत की गंगा बहती है। क्या है चरणामृत? कहां गंगा जी तो है, और क्या है? गंडकी नदी तो नेपाल से आती है ना, यहां नहीं प्रवाहित होती, यहां नहीं है? क्यों नहीं है? भारत में ही तो गंडकी नेपाल से आकर कहां गई? जिस शालिग्राम की हम पूजा करते हैं, रोज चरणामृत एक एक बिंदु माथे पे छटकाते हैं, और अनंत 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 शालिग्राम को धौत करके वो नदी प्रवाह माना है, कहां? भारत भूमि में। गंगा जी है, यमुना जी है, कहीं भी विश्व में ऐसी नदियां हैं क्या चरणामृत लेकर के चलती है? इसलिए अपने गौरव को अपने स्वाभिमान को स्मरण करना चाहिए। भक्ति योग प्रयोजित है, इससे भक्ति बढ़ती है। प्रयोग करना चाहिए, लगा देना चाहिए भक्ति को किसमें? प्रभु में, जैसे व्याध ने लगाया। नारद जी कुंभ मेला में पधारे, पर रास्ते जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ पशु वहां पड़े थे और छटपटा रहे थे, हां बाण विद्ध थे। और नारद जी ने देखा कोई शिकारी अवश्य होगा, यहां देखा एक पेड़ की ओट में पीछे एक भयंकर शिकारी धनुर्बाण लेकर खड़ा था। श्याम वर्ण रक्त नेत्र महाभयंकर धनुर्वाण धरे, हस्ते जेन साक्षात जमदंड धर। एक तो काला था और उनके आंखें लाल लाल सी थी, और फिर तीस पर हाथ में धनुर्वाण, धनुर्वाण हस्ते जन साक्षात यमदंड धर, मानो साक्षात मृत्यु है। श्री नारद जी ने देखा, बोला शिकारी ये जो शिकार है ये सब तुम्हारे? हां जी हां जी, ये सब मेरे, आपने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा, पर एक बात मैं पूछूं, तुम व्याध हो, तुम शिकारी हो, शिकार करते हो, तुम्हारी गलती बहुत ज्यादा नहीं है, पर इनको अधमरा करके छोड़ते हो, तुमको इससे क्या लाभ मिलता है? क्या आप जानते हो उस शिकारी ने क्या उत्तर दिया? ऐसा उत्तर प्राय बहुत कम लोग दिया करते हैं। हां उत्तर सुनो, मेरे साथ गाओ। अधमरा जीव यदि धड़ फड़ करे, अधमरा जीव यदि धड़ फड़ करे, ताहा देखे आनंद मो बाढ़े अंतरे, ताहा देखे आनंद मो बाढ़े अंतरे। आह, इतना क्रूर, इतना निष्ठुर, इतने निर्दयी शिकारी था वो। वो कहता है वो अधमरा जीव जब धड़पड़ करता है, छटपटाता है, उसकी छटपटाहट को देख करके हमको आनंद आता है। अधमरा जीव यदि धड़पड़ करे, हाँ तहा देखिए आनंद में बाढ़े अंतरे। कभी कभी हम श्याम सुंदर को गाली देते हैं, यदि क्रोध आता है तो क्रोध को उसी में ही दे देते हैं। नारद जी ने कहा है, तदर्पिता खिलाचारसन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन् एव करणीयम्। बोले यदि तुम भक्ति करते हो, तुम्हारे में क्रोध आता है तो किसको गाली दोगे? उसी को दो, और तो तुम्हारे सामने कोई है ही नहीं। काम आता है तो उसी को कहो, क्रोध आता है तो उसी से क्रोध करो, अभिमान आता है तो उसी को लेके अभिमान करो, क्योंकि तुमने समर्पण कर दिया। भाई जिसका घर सरकार ने ले लिया, हां उठ गया, तो उसमें जो ऋण भी है वो भी उस ऋण सरकार का ही होगा। हमारे में काम है, क्रोध है, अभिमान है, पर है किसके? तुम्हारे हैं। हम अपने को समर्पित कर दिया है, पर व्याध इतना निष्ठुर था, उसने कहा ऐसा हो रहा है। नारद जी को बड़ी दया आई, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई न जाने रे। पीड़ देखकर, पीड़ा देखकर, पराई की पीड़ा देखकर वैष्णव छटपटाता है। नारद जी ने कहा ठीक है, एक वरदान हम तुमसे चाहते हैं। व्याध खिलखिला करके हंसा, अरे तुम हो मुनि ऋषि संत साधु और हम एक शिकारी है, भील है, हमसे चाहते हो कुछ? क्या चाहिए तुम्हें? मृगचाल चाहिए, बाघचाल चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? मांगो, अभी देते हैं। नहीं शिकारी, हमें वो सब कुछ नहीं चाहिए, एक बात चाहिए, एक वचन चाहिए तुमसे। क्या वचन है? सत्य करो। ठीक है, सत्य किया ना। आज से तुम जिन जीवों को मारोगे ना, उनको अधमरा मत करना, उनको जीवन से मार देना। वो व्याध हैरान हुआ है, ये क्या है, ये कौन सा वचन होता है, ये कोई वचन है? हां जी, यही वचन हमें चाहिए। तो संपूर्ण बातें होती है और उसने वचन दिया, फिर कहा मैं कैसे जीऊंगा। नारद जी ने कहा हम तुम्हें भोजन देंगे, सब व्यवस्था हो गई और नारद जी ने उनको मंत्र देकर चले गए। और कुछ दिनों के पश्चात जब नारद और पर्वत दोनों मित्र, नारद जी के वचनों को कोई विश्वास करेगा नहीं करेगा, इसलिए कि मित्र साथ ले आए, चलो भाई हम दोनों ले जाते हैं, एक साक्षी को साक्षी नहीं माना जाता, दो चार साक्षी चाहिए। बोले पर्वत जी चलो मेरे संग, हम देखते हैं। तो आ गए और जब देखे क्या क्या देखे, वो व्याध जब इनका सम्मान करने आ रहा था तो रास्ते में चींटी है और अपने उत्तरीय से उनको हटाते हटाते आ रहा था। पर्वत मुनि ने कहा ये क्यों आ रहा है, ऐसा उछल कूद क्यों कर रहा है? नारद जी ने कहा ये रास्ते में जो कीड़ी चल रही है, जो जो चींटियां चल रही है, उनको हटाता हुआ आ रहा है और वो सोच रहा है कहीं नहीं। फिर पूछे, वो तो नारद जी का भाव था, बोलो चलो चल करके देखेंगे। तो उनसे पूछा गया व्याध तू ये क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? महाराज रास्ते में चींटी थी, चल रही थी, कहीं मेरे पैरों के तले नहीं आ जाए, इसलिए मैं उनको हटाते हटाते जब आ रहा था मुझे उछलना पड़ता था। तब पर्वत मुनि के मुखारविंद से अनायास निकला एतेना यद्भुता बाधा तवा हिंसा दय गुणा। बोले हे व्याध, ये कोई आश्चर्य नहीं है, कोई अद्भुत नहीं है कि तुम्हारे में ये अहिंसा आदि गुण उत्पन्न हो गए। क्यों? हरिभक्ता प्रवृत्ता जे नते स्यु परतापिनः। बोलो जो हरिभक्त में प्रवृत्त हो जाते हैं वो परतापी नहीं होते, परों को पीड़ा नहीं देते, दूसरों को पीड़ा नहीं देते, ये भाव है, ये गुण उत्पन्न हो जाते हैं। जनेति आंसु वैराग्यम, दया आ गई। और वैराग्य तो फिर अलग बात है, वैराग्य और ज्ञान, ज्ञान क्या है? ज्ञान माने, ज्ञान का अर्थ होता है दर्शन, यद ब्रह्म दर्शनम दृश्यते अनेन इति ज्ञानम दर्शनम। बोले जिनके द्वारा हरि का साक्षात्कार हो जाए उसको ज्ञान कहते हैं, और वैराग्य उसका आधार है। वैराग्य के बिना मेरी माताओं ज्ञान नहीं होता है, नहीं ऐसे हलवा पूरी कचौड़ी खा करके किसी को ज्ञान आज तक नहीं हुआ है, किसी को नहीं हुआ है। शरीर को भौतिक सजावट करके भक्ति करना, इसको आचार्यों ने कहा मानो नदी भवनदिया को पार करना चाहते हो, घड़ियाल को काठ मान करके तुम उस पर सहारा बनाते हो। घड़ियाल को कोई काठ मान करके उस पर चढ़ जाएगा तो क्या होगा नदी में? घड़ियाल उसको खा जाएगा। ऐसा नहीं, जितना आवश्यक है, रूप गोस्वामी ने लिखा है भक्त रसामृत सिंधु में, ये वैराग्य भी इस भक्ति से उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान तो उत्पन्न हो ही जाता है, अहिंसा देव गुण, वैराग्य भी उत्पन्न होता है जो ज्ञान की आधार भूमि है। वैराग्य कई प्रकार के हैं, कई प्रकार। मन करता है इसी श्लोक पर 7 दिन ही बोलूं। फल्गु वैराग्य, मर्कट वैराग्य, युक्त वैराग्य, श्मशान वैराग्य, सहेतुक वैराग्य, अहेतुक वैराग्य। पर जिस वैराग्य की यहां आवश्यकता है वो है युक्त वैराग्य। ये ना तो श्मशान है, ना तो फल्गु है, ना मरकट। वास्तव में मरकट वैराग्य कोई वैराग्य नहीं होता है, उसको तो महाप्रभु ने ऐसे मजाक से बोल दिया उनको, किसको? रघुनाथ दास गोस्वामी को। वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य का हेतु कई हेतु है, कभी कभी जो कारण बनकर के वैराग्य होता है वो वैराग्य बहुत ज्यादा नहीं टिकता है, नहीं धन नहीं है और छोड़ करके साधु बना, और जब धन आ गया तो चोरी करने लगा, वो वैराग्य ज्यादा दिन टिकता नहीं है। लेकिन वैराग्य वो टिकता है जिसमें ज्ञान रहता है। यदि जानता है कि संसार दुखालयम है फिर उसका वैराग्य टिकाऊ होता है। वो जानता है भोग में रोग का भय है, वित्त में राजा का भय है, भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम, आभिजात्य परंपरा में जन्म लेंगे तो उसमें च्युत होने का भय है, गुणवान हो जाएंगे तो खलों से बदमाशों से भी डर है, शास्त्रवान विद्वान बनेंगे तो वादी और भी कोई आ जाएगा, ऐसे नौ प्रकार के भय सदैव सताते हैं, उसमें नहीं है। ये भय तो सदैव है, वहां आनंद कहां है? आनंद तो उसको मिला है, वो व्याध जिनको तड़पा तड़पा करके आनंद मिलता था आज वो अहिंसा में उस परमानंद ले रहा है। कई लोग संसार में होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट काइंड से आनंद होता है, किसको चाय में आनंद मिलता है, किसको गाली देने में आनंद मिलता है नहीं? कई लोग ऐसा ही है जब तो गाली नहीं दे तो उनका खाना नहीं पचता, उसी में आनंद होता है। किसी को मारकाट में आनंद होता है, युद्ध छेड़ने में आनंद होता है, कहीं किसी को सेवा में आनंद होता है, परंतु प्रभु ये आनंद कहीं टिकता नहीं है। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनुषो साहा, आनंदो ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। ये सारे भय है, जहां भय है वो आनंद कहां है? तो आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, वो श्री कृष्ण को जानने पर ही वो निर्भय होता है, अभय होता है। भजहुं रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद रे, भय भय भी तो लोग क्या आनंद को प्राप्त करेगा। तो हम लोग इस भक्ति योग में हैं, ये भक्ति योग में ही वैराग्य वृद्धि होता है। भक्ति का श्रवण करने से, जब बार बार आप श्रवण करोगे ये संसार दुखालय है दुखालय है, तो क्या वैराग्य नहीं आएगा? आएगा, बार बार श्रवण करने की आवश्यकता है। पर हां, ध्यान पूर्वक, ऐसा नहीं कि सुन लिया फिर वहां चल के चटपटा गोलकुप्पे खाने लगा, नहीं, जब जान लिया गोलकुप्पे खराब है फिर उसको क्यों खाए, यही है श्रवण है। जनयति आंसु वैराग्यम, जब भक्ति का प्रथम अंग है श्रवणम, और श्रवण का मुख्य अंग है मंतव्यम, जो आपने सुना उसको रखो, धारण करो, मनन करो, उसी से ही होता है। सुना कि बार बार गीता में कहा गया अनित्यम असुखम लोकम, इसमें यही है प्रयोजित है प्रभु, यहीं पर ये इस श्लोक में, संपूर्ण श्लोक में जो क्रियापद है प्रयोजित, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम भक्ति को संपूर्ण रूप से काय से मन से वाणी से निष्काम भाव से श्री कृष्ण को समर्पित हो जाएंगे तो विज्ञान के अनुसार हमारे में गुण आएगा, इसमें कोई शंका संभावना नहीं है, निश्चित रूप से आएगा। यदि हमारे में कहीं ना कहीं कमी है तो हमको देखना पड़ेगा कि हमने प्रयोजित नहीं किया। हम तो भक्ति कर रहे हैं, कहीं ऐसे ही किसी आवेश में अथवा किसी भाव में कहीं ऐसे शुरू तो कर दिया, अच्छी बात है, परंतु जैसे जैसे भागवत हम श्रवण करते चलेंगे इसमें ये सब महत्वपूर्ण प्रसंग आएगा तो हम अपने में सुधार करते चलेंगे, फिर ये धीरे धीरे हमारे में ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाएगा। वास्तव में ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति भी वृंदावन में क्या है, है? नहीं नहीं वो नहीं है, भक्ति दुखी नहीं रहेगी। भक्ति इधर आ गई, आकर के भक्ति ने जब जब देखा कि मेरे पुत्र दोनों बूढ़े हैं, हाँ घटते जरठा माता तरुणो तनयाविति, अरे होना चाहिए कि वृद्धा मां हो और बेटे जवान हो, पर हो गया विपरीत, मां हो गई जवान और बेटे हो गए बूढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए भक्ति क्या है, भक्ति दुखी नहीं है। आप लोग पद्म पुराण पढ़िए, उसमें कहा गया कि भक्ति बड़ी दुखनी हो गई, और वो तो रोती थी बिलखती थी और संतों से सहायता मांगती थी कि भाई मेरा दुख का कहीं निवारण करो। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ यदि हम लोग वृंदावन में भक्ति कर रहे हैं, भक्ति तो हमारा जवान है, मंगल आरती आना है, माला का जप करना है, सत्संग में बैठा है, तो भक्ति तो जवान है ही है, पर ज्ञान नहीं है वैराग्य नहीं है, तो हमारे अंदर भक्ति महारानी क्या कर रही है, सिसक सिसक करके रो रही है, वो नारद जी की प्रतीक्षा कर रही है कब आएंगे ऐसे संत तो मेरे पुत्रों को जवान। किसी मां को भी अच्छा नहीं लगता कि मैं जवान हो जाऊं और मेरे सफेद दाढ़ी वाले दो बेटे ऐसे मेरे साइड में रहे, किसी को अच्छा नहीं लगता। मां भी कहती है हां मेरे बेटे भी सुंदर हो जाए, जवान हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, हृष्ट पृष्ट हो जाए, वो कीर्तन में नाचे। और ऐसा ही भागवत कथा हुई और भक्ते सुततो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सासा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ते नामानि मोह बदंती। संत कह रहे कहां से आ गए, कहां से आ गए, कहां से। तो भक्ति अचानक वहां प्रकट हुई और साथ में दो पुत्र थे और इतने तंदुरुस्त थे। पहले पहले तो आप लोगों ने सुना होगा वो ऐसे लेटे रहते थे, उठ नहीं पाते थे, परंतु इस सभा मंडप में आकर के वो नृत्य कर रहे हैं। केवल नृत्य नहीं कर रहे, वो गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे ते नामानि मोहुर बदंती हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। चलते चलते हमारा यही निवेदन है, हमको चाहिए कि हम भक्ति देवी को दुखी ना करें। यदि मां दुखी हो जाएगी पिता का दर्शन कहां से होगा, कभी नहीं होगी। मां जाकर के हमारे लिए कहेगी ये दुखी है इन्हें दर्शन दे दो, तब ब्रह्म दर्शन होगा, है नहीं। ज्ञानम वैराग्यम जत्त ज्ञानम ब्रह्म दर्शनम, वैराग्य युवा होगा, ज्ञान युवा होगा, मां सुखी होगी, तीनों सभा मंडप में नृत्य करेंगे, तब कहीं प्रभु के दर्शन होंगे। अन्यथा तो भक्ति रोएगी, भक्ति रोएगी तो हमारा जीवन रोएगा। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। गौर प्रमानंदे हरि हरि। कायेन वाचा मनसे इंद्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा स्वभावात् करोति यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पितम्।